ओम शांति। प्यारे बाप दादा ने हमको अडॉप्ट करके गोद के बच्चे सर्वश्रेष्ठ पावन ब्राह्मण बनाया है। प्यारे बाबा का ये ब्राह्मण परिवार सारे विश्व में और सारे कल्प में हाईएस्ट भी है और होलीएस्ट भी है। बाबा कहते हैं आप बच्चों के नाम पर जो आज नामधारी ब्राह्मण है वो भी बच्चों की हाईएस्ट और होलीएस्ट स्थिति को प्रकट करते हैं, उसका यादगार है। ब्राह्मणों को चोटी दिखाई जाती है, चोटी हाईएस्ट ऊंचे से ऊंचा स्थान है। जैसे हमारे प्यारे बाबा ऊंचे से ऊंचे स्थान पर हैं, तो बाबा के बच्चे भी ऊंचे से ऊंचे स्थान अर्थात स्थिति पर हैं। फिर आज भी कोई शुभ कार्य करना होता है, कोई विशेष कार्य करना होता है तो ब्राह्मण द्वारा ही कराया जाता है। उन बाबा के होली बच्चे ब्राह्मणों की यादगार में आज का ब्राह्मण भी कोई जन्मदिन हो, कोई गृह प्रवेश हो, किसी का शरीर छूट जाए, कोई भी कार्य हो तो ब्राह्मण को बुलाते हैं। उनका जीविका ही इससे चलती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट और हाईएस्ट ब्राह्मण बच्चों का भविष्य का आगे का हमारा क्या इससे भी ऊंचा स्थान है। तो इसलिए हम याद करते हैं अपने ब्रह्मा बाबा को। तो ब्रह्मा बाबा ने इस साकार सृष्टि पर अपने शरीर रूपी रथ को तथा तन मन धन सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पित किया। तो काफी समय तक साकार लोक में इस दुनिया में ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा हम साकार शरीरधारी बच्चों को गोद में लेकर ब्राह्मण बनाकर इस ब्राह्मण परिवार की वृद्धि करते रहे। उसके बाद दो कारणों से ब्रह्मा बाबा ने सूक्ष्म शरीर धारण किया अर्थात अव्यक्त फरिश्ता रूप धारण किया। एक तो ये कि इस लोक में भी बाबा संकल्प श्वास हर प्रकार से दधीचि ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी दे करके यहाँ तपस्या करते रहे। फिर बाबा ने सोचा कि सारे विश्व का कल्याण करना है, तो शरीर में रहकर फिर भी शरीर के बंधन होते हैं, शरीर को कुछ ना कुछ टाइम देना पड़ता है, तो क्यों ना अव्यक्त रूप से, जिसमें आप जानते हैं अव्यक्त लोक में दिन रात नहीं होता, कोई भी बंधन नहीं होता, फरिश्ता फ्री होता है, तो उस रूप को धारण किया ताकि सेवा की स्पीड फुल स्पीड करी जा सके। दूसरा कारण हम सब जानते हैं कि बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों ने मेरी राजगद्दी को भी फॉलो करना है। पहले श्री लक्ष्मी नारायण के बाद दूसरे श्री लक्ष्मी नारायण आएंगे, तीसरे आएंगे, तो बच्चों को भी कारोबार, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको कारोबार सौंप दिया जाता है वानप्रस्थी होकर। वो रस्म भी यहीं से निकली है, तो अपने बच्चों को आगे यज्ञ को चलाने के लिए स्वयं बैकबोन बनकर, स्वयं करावनहार बनके बच्चों को निमित्त बनाया। अब जो फरिश्ता बनने की बात है, तो अगर आप ब्रह्मा बाबा के अंतिम बोल सामने लाए, स्मृति में लाए, कि जब ब्रह्मा बाबा साकार से अव्यक्त हुए, उन्होंने 18 जनवरी 1969 में अपना फरिश्ता रूप धारण किया, उसके बाद जब बाबा आए दूसरे तन में, तो बाबा ने हम बच्चों को लास्ट बोल क्या क्या उच्चारे, क्योंकि फरिश्ता बनने का लास्ट पुरुषार्थ अर्थात ब्रह्मा बाबा जब लास्ट में फरिश्ता बने, साकार से अव्यक्त रूप धारण किया, उस समय उन्होंने जो हमारे लिए बोल उचारे कि बच्चे ये शब्द याद रखना, ये फरिश्ता बनने का मंत्र है। हम सब जानते हैं कि बाबा ने क्या बोल उचारे थे, निराकारी निर्विकारी और निरअहंकारी, अर्थात तीन लोक हैं, हमने तीनों लोकों की तैयारी में क्या करना है कि अपने स्वीट साइलेंस होम के लिए हमें अपने निराकारी रूप को धारण करना है, निराकारी रूप को इमर्ज करना है और निराकारी रूप में रहने का अभ्यास करना है। जो सूक्ष्म लोक है, फरिश्ताओं की दुनिया है, जहां अब हमारे बाबा हैं, उस लोक के लिए बाबा ने क्या कहा? उस लोक के लिए बाबा ने कहा कि निर्विकारी बनना है, क्योंकि निर्विकारी बने बगैर हम फरिश्ता नहीं बन सकते। इसलिए ब्राह्मणों को वैसे भी पावन जीवन बनने का लक्ष्य दिया जाता है, जब हम पूर्णता पावन बन जाएंगे तो हम फरिश्ता लोक में जा सकते हैं। अब आप देखिए, फरिश्ता लोक के अंदर हड्डी मांस का शरीर तो होता ही नहीं, और हाँ, फरिश्ता बिल्कुल हल्का होता है। अगर किसी को इस लोक में मान लो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, इस लोक में किसी को शुगर की बीमारी है, जब वो फरिश्ता बन जाएगा तो वहां वो बीमारी रहेगी? जब शरीर ही नहीं रहेगा, अव्यक्त शरीर होगा, तो ना तो ब्लड प्रेशर रहेगा, ना उसको शुगर की बीमारी रहेगी। इसी प्रकार से इस लोक में साकार रूप में किसी के अंदर ईर्ष्या है, किसी के अंदर द्वेष है, कोई कमी कमजोरी है, गुस्सा आ जाता है, सहन शक्ति नहीं है, परख शक्ति नहीं है, जितनी भी शक्तियां हैं सामना करने की शक्ति की कमी है, निर्णय ठीक तरह नहीं ले सकता है, तो फरिश्ता लोक में क्या होगा? फरिश्ता लोक में तो ऐसी कोई बात होती नहीं। यहां आपको कोई कहे मिठाई खा लो, तो कई भाई बहन कह देते हैं कि नहीं, भारी चीज है, हम नहीं खाएंगे। फरिश्ता लोक में आप जितनी मर्जी मिठाई खा लो, आपको कोई असर होने वाला नहीं है। तो ऐसा फरिश्ता लोक में वो रूप धारण करने के लिए कई भाई बहन सोचते हैं कि फरिश्ता रूप कैसा होता है, वो तो आप सब ने कभी ना कभी टोटल फरिश्ता रूप, अशरीरी रूप, कर्मातीत अवस्था या विदेही अवस्था का जरूर अनुभव किया होगा। 18 जनवरी के दिन या किसी भी विशेष दिन आप विशेष योग करते हैं, भट्टी करते हैं, तो आपको इसका अनुभव जरूर हुआ होगा कि आपको शरीर होते हुए भी शरीर महसूस नहीं होता। लेकिन और आसानी से अपने फरिश्ता रूप को समझने के लिए आप ये सोचो, आपको सपन तो आता है ना रात को, जिस जिस को कभी ना कभी रात को सपना आता है वो हाथ उठाओ। सपना आता है ना आप माताओं को भी आता है सपना? ठीक है, अब आप देखो सपने की अवस्था में क्या होता है। शरीर तो आपका लेटा हुआ होता है, सोने की अवस्था में होता है, लेकिन जो आपका दूसरा शरीर है जिसको हम अकारी शरीर कहते हैं, वो सारा सपना देख रहा होता है, चल फिर रहा होता है, भाग दौड़ कर रहा होता है, उसको पूरी की पूरी अनुभूति होती है। कहीं गिरता है तो भय की फीलिंग आती है, कोई उसके पीछे दौड़ता है तो वो फीलिंग आती है। तो जिस प्रकार से हमको सपने की अवस्था में शरीर है लेकिन शरीर से अलग होकर आपका मन सपना देखता है, इसी प्रकार से आप फरिश्ता रूप में शरीर यहां ही है लेकिन यहां से अलग होकर के अलग अनुभूति करते हैं। यहां बैठे बैठे भी मान लीजिए अभी हम सब डायमंड हॉल में बैठे हैं, हमको पता है कि यहां बैठे हैं, फिर भी कितना समय हम सचमुच यहां बैठे रहते हैं? शरीर तो यहां बैठा रहता है लेकिन आपका मन कहां का कहां चले जाता है। तो शरीर तो यहां है पर आप अनुभूति क्या करते हैं? क्या आप क्लास सुन रहे होते हैं? कान तो खुले हैं, कानों का कोई दरवाजा नहीं होता, तो कान में आवाज पड़ भी रही है, लेकिन मन से अगर आप कहीं और हैं, आप अपने कमरे में चले गए हैं, अरे मेरे पैसे भूल गए थे, आप अपने वापसी के टिकट रिजर्वेशन की सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, तो वास्तव में आप वहां हैं, शरीर यहां है आप वहां है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपका मन जो है, जहां पर आपका मन है वहीं आप हैं, हमारा गीत भी है। तो इसलिए फरिश्ता रूप में हमको जो बाबा ने कहा है कि निर्विकारी अवस्था, में ही हम फरिश्ता बन सकते हैं। अगर कभी भी हमें यहाँ पर इस शरीर में फरिश्ता की अनुभूति करनी हो तो हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इनके बाल बच्चे जिसको ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि इत्यादि कहा जाता है, किसी प्रकार की अट्रैक्शन, किसी प्रकार की आसक्ति, किसी प्रकार का बोझ होगा तो हम फरिश्ता नहीं बन सकते। अब मोटी और आसान बात यह है, इस वक्त आप अच्छी तरह बैठे हैं, हल्के फुल्के बैठे हैं, आपको कहें हाथ उठाओ तो आप हाथ उठा देते हैं, आपको प्रेम संजी कहें खड़े हो जाओ एक्सरसाइज करो तो आप उठ जाते हैं, ठीक है। आप चल के यहाँ आए हैं, कोई कह दे डायमंड हॉल में बहुत बड़े सांप आ गए हैं तीन तो आप भाग भी जाएंगे आसानी से, तो ये कौन आपको चलाता है? यही आत्मा जब शरीर से निकल जाती है, शरीर तो यही है, शरीर का वजन आप झोलते हैं तो यही है, लेकिन जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो क्या होता है? वो जो बॉडी रह जाती है वो कितनी भारी हो जाती है, उसको उठाने के लिए, अभी तो आप खुद ही उठ जाते हैं, उसको उठाने के लिए चार व्यक्ति चाहिए, अब वो भी थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं कि अब दूसरा कोई कंधा लगाए। अब उसके अंदर आत्मा होती है तो आप देखो कितने हल्के होते हैं। तो इसलिए हल्का कौन करता है शरीर को? आत्मा। अर्थ यह हुआ कि आत्मा हल्की चीज है, क्योंकि आत्मा का कोई वजन नहीं होता। साइंस में भी पढ़ाते हैं, ए पॉइंट हैज नो हाइट, नो वेट, नो लेंथ, नो ब्रेथ, कि एक जो बिंदु होता है उसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, बिंदु बिंदु ही होता है। और ये तो चैतन्य बिंदु है, तो चैतन्य बिंदु जैसे बिजली की शक्ति है, स्विच ऑन करो पंखा चल पड़ता है, जब आत्मा इसके अंदर है तो हल्का रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि आत्मा हल्की चीज है। फिर आत्मा को भारी कौन करता? आपका मन अगर भारी हो जाए तो आत्मा भारी हो जाती है, आपका मन हल्का हो जाए तो आत्मा हल्की हो जाती है। तो बाबा ने दो शब्द बताए हुए हैं, उमंग और उत्साह। जब मन के अंदर उमंग और उत्साह है तो आत्मा हल्की है, शरीर को भी हल्का रखेगी। और दूसरे दो शब्द बताए हुए हैं, आलस्य और अलबेलापन। आलस्य और अलबेलापन आएगा, मन भारी हो जाएगा तो शरीर भी भारी हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि ब्राह्मण का जीवन का प्राण है उमंग और उत्साह। हमारा गीत भी है, उमंगों के पंख लगाते चलो, उठते चलो, उड़ाते चलो। तो इसलिए ये जो बाबा ने अपना अंतिम अनुभव बताया हुआ है, ब्रह्मा बाबा ने फरिश्ता बनने से पहले, तो ये कहा हुआ है कि आकारी दुनिया में जाना है, फरिश्ता बनना है तो निर्विकारी बनना पड़ेगा। निर्विकारी विकार ही बोझ है। अब किसी को क्रोध आ जाए और वो कहे मैं फरिश्ता बन जाऊंगा, नहीं बन सकता, भूत बन सकता है, क्योंकि क्रोध एक भूत है। फरिश्ते और भूत में क्या फर्क होता है कि फरिश्ता फ्री होता है, अब वो कहीं टिकता नहीं है और सदा सुख देता है, और जो भूत होता है वो भी पावरफुल होता है लेकिन वो दुख देता है। अब किसी के अंदर क्रोध आता है तो क्रोध परमिशन लेके नहीं आता कि मे आई कम इन सर, मैं अंदर आ जाऊं, नहीं, बिना परमिशन के आता है, तंग करता है। फिर आप क्रोध को कहो बाहर चले जाओ तो भूत बाहर नहीं जाता, भूत को पीट कर, मार कर, मिर्ची सुंगा कर भगाया जाता है। इसलिए ये फर्क है। तो बाबा कहते हैं अगर भूत होगा तो फरिश्ता नहीं हो सकते, और भूत जो हैं वो भूतों का सबसे बड़ा पिंजरा ये शरीर है, जिसको कहा जाता है पंच भौतिक शरीर, पंच महाभूतों का बना हुआ शरीर, अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ शरीर। इस शरीर के पिंजरे में जब आत्मा कैद है और अपने आप को शरीर मानती है तो उसके फरिश्ते बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब एक बात और सोचने की है कि बाबा ने कहा निराकारी अर्थात बिंदु रूप साइलेंस परम धाम के निवासी, बाबा ने कहा निर्विकारी अर्थात सूक्ष्म लोक के सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्ता रूप वाले, लेकिन फिर बाबा ने निरअहंकारी कैसे कहा? साकार लोक के लिए बाबा ने कहा यहाँ पर बच्चों को निरअहंकारी होके रहना है, अगर निरहंकारी होंगे तभी निर्विकारी बन सकेंगे और तभी निराकारी बन सकेंगे। सोचने की बात यह है कि पांच विकारों में भी तो अहंकार आता है कि नहीं आता, काम क्रोध लोभ वो अहंकार, तो जब फरिश्ता बन गए निरहंकारी बन गए तो फिर यहां बाबा ने विशेष कहा कि साकार लोक में निरहंकारी होके रहना है, निराकारी निर्विकारी जिसमें भी अहंकार है, और फिर अलग से बाबा ने कहा निरहंकारी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, किस चीज का अहंकार? तो बाबा कहते हैं कि फर्स्ट सबसे पहला जो अभिमान है जिससे सारे अभिमान पैदा होते हैं बल्कि सारे विकार पैदा होते हैं वो है देह शरीर। तो हमेशा बाबा कहते हैं देह और देह के संबंधों को पहले बाबा देह कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे फरिश्ता लोक में आपके देह के संबंध रहते हैं? रहते ही नहीं, क्योंकि देह ही नहीं रहता तब आप फरिश्ते का कोई रिश्तेदार नहीं होते, क्योंकि फरिश्ते का परिभाषा क्या देते हैं हम? फरिश्ता वो है जिसका नहीं कोई फर्श से रिश्ता, नहीं कोई फर्श से रिश्ता वो फरिश्ता है। तो फिर उसका रिश्ता कहाँ है? तो बाबा कहते हैं अब तक हम ये कहते आए जिसका नहीं फर्श से रिश्ता वो फरिश्ता, अब हमें इसमें ऐड करना है। ऐड क्या करना है? कि जिसका सब रिश्ता बाप से वो फरिश्ता। फरिश्ता कौन? जिसके सब रिश्ते बाप से। तो बाप से जुटेंगे तो यहां से छूट जाएंगे। हम गीत क्या गाते हैं? मेरा तो कौन? मेरा तो शिव बाबा एक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे सब रिश्ते शिव बाबा के साथ हैं, अर्थात जो यादगार बाबा के सारे संगम युग के ज्ञान का यादगार पुस्तक भगवत गीता है उसके बाहर शुरू में लिखा हुआ तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रवणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव, अर्थात माता पिता बंधु सखा स्वामी सब तुम ही हो। इसका अर्थ यही निकला कि सारे रिश्ते बाबा से, तो फिर दूसरा ना कोई, तो क्या मेरा अगर शिव बाबा पिता है तो दूसरा पिता कोई होगा? नहीं, क्योंकि आत्मा का पिता है, बाकी तो शरीर का है, तो वो अहंकारी में आ जाएगा, देह में आ जाएगा। मेरा माता, हम कहते हैं शिव बाबा पिता है, ब्रह्मा बाबा माता है, दोनों मिलके मात पिता है, आत्मा के रूप से बाप दादा है। तो माता पिता बंधु सखा सारे रिश्ते बाबा के साथ हैं, तो इसको कहते हैं निरहंकारी। जब देह ही नहीं रही तो फिर देह का मकान, देह का सेंटर, देह का मोटर कार, देह का ये, देह का वो तो नहीं रहेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं अगर फरिश्ता बनना है तो पहली बात क्या है कि फरिश्ता अर्थात जिसके सब रिश्ते बाप से हैं, बाकी कारोबार चलाने के लिए है। जैसे युगल कहते हैं ना, शारीरिक रूप से दुनिया वालों को कहेंगे ये युगल है, ये इसका पति है, ये इसकी पत्नी है। आगे तो धर्म पति धर्म पत्नी कहते थे, अब धर्म तो हट गया, पति पत्नी है। लेकिन आत्मा के रूप से हम देखते हैं कि हम सब आत्मा भाई भाई हैं, शरीर के रूप से भाई बहन है। और उस रूप से लाखों बीके युगल चलते हैं, क्योंकि बीके युगल अर्थात ब्रह्मा कुमार और वो ब्रह्मा कुमारी। दुनिया के अंदर एक बारी अगर कुमारी भी शादी कर ले तो दोबारा कुमारी नहीं बन सकती। लेकिन बाबा ने शादी की हुई युगलों को भी कुमारी बना दिया, ब्रह्मा कुमारी। तो देखो वंडर है ना बाबा का। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सारा रूहानी खेल है। आप मुरली के, आज की मुरली के भी पहली पहली लाइन पढ़ेंगे तो क्या होगा। और रोज बाबा मुरली में कहता है रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रू रिहान कर रहे हैं, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अर्थात ये हमारा सारा कुछ रूहानी है, और रूह के साथ जो शरीर जुड़ गया है, और शरीर भी सतयुग में भी था लेकिन शरीर में जो विकार जुड़ गए हैं इस, और देह भान आ गया है अर्थात उल्टा हो गया, हम अपने आप को ही आत्मा की बजाय शरीर मानने लग गए, मेरे को मैं कहने लग गए और मैं को गायब कर दिया। आजकल किसी से भी पूछो दुनिया में आपका नाम क्या है तो शरीर का नाम बताएगा, आपके पिताजी का क्या नाम है शरीर का नाम बताएगा, आपका एड्रेस क्या है शरीर का एड्रेस बताएगा, आप कौन है मैं इंजीनियर हूँ बैरिस्टर हूँ डॉक्टर हूँ शरीर का बताएगा, आपके पास धन कितना है तो बैंक का बैलेंस बता देगा। तो सारा कुछ तो शरीर का है ना, तो उसको बेचारे को जो आत्मा का धन है उसका तो ज्ञान ही नहीं है, आत्मा की जो शक्तियां उसका भी ज्ञान नहीं है। तो उल्टा होने से कोई अपने आप को ड्राइवर की बजाय मोटर मानना शुरू कर दे और मोटर को ध्यान रखे और आत्मा का ध्यान ना रखे तो क्या होगा, एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट होगा। तो लाइफ में रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है, इसलिए बाबा कहता है फरिश्ता रूप। तो फरिश्ता रूप ब्राह्मण रूप में रहते हुए हमें फरिश्ता बनना, ये नहीं सोचना कि एक दिन आएगा कि हम बस ब्राह्मण से फरिश्ता बन जाएंगे शरीर छोड़कर, नहीं। जैसे कई सोचते हैं बड़ा अच्छा है सतयुग आए, बड़ी अच्छी बात है, सब दुख दूर हो जाएंगे। अरे सतयुग तो आएगा पर तुम उस सतयुग में होगे क्या, देखने की बात तो ये है ना। तो मुझे तो तैयारी करनी है, मैं अगर देवताओं के संस्कार धारण करूंगा, अपने अंदर प्रेम स्वरूप बनूंगा, शांति स्वरूप बनूंगा, सुख स्वरूप बनूंगा, तब मैं सतयुग में जाऊंगा ना। नहीं तो सतयुग की आबादी तो बहुत थोड़ी है। आज बाबा ने मुरली में बहुत अच्छी बात हम बच्चों को तसल्ली दी कि जो भी मेरे बच्चे हैं स्वर्ग में जरूर आएंगे, यानी स्वर्ग लोक में जरूर आएंगे, सतयुग में जरूर आएंगे, मेरे बच्चों के अलावा और कोई सतयुग में नहीं आ सकता। अब देखो इस समय दुनिया की आबादी 800 करोड़ है, अब बाबा के बच्चे कितने हैं, 10-12 लाख होंगे। तो बाबा कहते हैं कि अभी भी अगर सतयुग आना हो तो उसमें कौन आएगा, वो 800 करोड़ तो नहीं आएंगे, बाबा के बच्चे ही आएंगे। तो राजधानी में स्वर्ग में आ गए, चाहे पद छोटा हुआ या बड़ा हुआ दूसरी बात है, आ तो गए ना, इसलिए हमको ये भी नशा है। तो बाबा कहते हैं थोड़ी सी मेहनत करके हम अपना पद ऊंचा कर सकते हैं, और उसके लिए क्या है, ब्राह्मण रूप में ही फरिश्ता रूप बन के चलना है। अब ब्राह्मण तो हम हैं, फरिश्ता ऐड कैसे करें? तो हमने आपको बताया फरिश्ता हल्का होता है, और हम आत्मा हल्की है, और आत्मा अगर मन को हल्का रखे, मन के ऊपर कोई बोझ ना डाले तो फरिश्ता है। आपने मोटे रूप से देखना हो, पहले तो आपने देखा कि शरीर में आत्मा है तो शरीर हल्का होके चलता है, आत्मा निकल जाए शरीर खड़ा ही हो जाता है, कितना भारी हो जाता है। अगर हम आत्मा शरीर में रहते हुए सिर्फ इतना ही अटेंशन रखें कि हमने डबल लाइट रहना है, फरिश्ता मैंने डबल लाइट, डबल लाइट मैंने, एक तो लाइट मैंने हल्का होता है और एक लाइट मैंने प्रकाश होता है, तो आत्मा तो है ही प्रकाश स्वरूप। तो आत्मा शरीर में रहते हुए हल्की रहे, ये है फरिश्ता। तो उसके लिए बाबा कहते हैं एक तो ये है कि मेरे सारे रिश्ते बाबा से बाकी निभाने के लिए इस दुनिया में रहते हैं। ब्रह्मा बाबा इस यहाँ दुनिया में रहते हुए फरिश्ता थे। अगर आज की डेट में देखना हो, इसी शांतिवन में देखना हो, तो दादी जानकी फरिश्ता, अभी दादी जानकी आएंगी, वो भी तो शरीर में है, हल्की रहती हैं, इसीलिए इतनी बड़ी आयु में चल फिर रही हैं, घूम रही हैं, प्लेन में जा रही हैं, एक्टिव हैं, कितने लोगों को फरिश्ता बना रही हैं। तो हमें सिर्फ फरिश्ता बनना ही नहीं है, बल्कि दूसरों को भी फरिश्ता बनाने की प्रेरणा करनी है। अब बाबा कहते हैं कि फरिश्ते के अंदर शूद्र के कोई संस्कार नहीं हो सकते, क्योंकि शूद्र मैंने अछूत, जिसको हम छू भी नहीं सकते। अगर ब्राह्मण ने फरिश्ता रूप धारण करना है तो पहली बात उसका खान पान ब्राह्मणों जैसा होना चाहिए, और आप जानते हैं कि ब्राह्मणों के भोजन को देवता भी तरसते हैं, ब्रह्मा भोजन को देवता भी तरसते हैं। अब ब्रह्मा भोजन आप रोज अपने घर में भी जो भोजन करते हैं उसको आप ब्रह्मा भोजन बना सकते हैं। अगर आप जो बाबा ने मर्यादा दी हुई है, एक तो आपका भोजन सात्विक होना चाहिए, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो बाबा अलाउ नहीं करते, उसके बाद भोजन को बनाया जाए बाबा की याद में, जैसे प्रसाद बनाते हैं, खाया जाए बाबा की याद में, तो ना केवल वो भोजन होगा बल्कि मन को भी शुद्ध करेगा। जैसा अन्न वैसा मन, अन्न की शुद्धि इम्पोर्टेंट है। तो कई बीकेज हैं, वो क्या करते हैं, बाबा के ज्ञान को ही अपनी मर्जी के अनुसार लगा लेते हैं। वो कहते हैं अरे योग लगाने से हम 63 जन्म के पाप भस्म कर सकते हैं, तो क्या योग लगा के हम बाजार का अन्न नहीं खा सकते? ऐसा उल्टा सोचना अर्थात अपने आप का नुकसान करना, क्योंकि अन्न की शुद्धि इम्पोर्टेंट है। फिर बाबा कहते हैं अन्न दो प्रकार का होता है, एक अन्न तो शरीर में जाता है फूड के रूप में, भोजन के रूप में, लेकिन भोजन कानों का भी होता है, भोजन आंखों का भी होता है। उसके लिए भी बाबा ने कहा हुआ है सी नो इविल हियर नो इविल। अगर आपने कानों से ऐसी बातें सुनने का आपको शौक है जो बाबा मना करता है, फालतू की बात, व्यर्थ बात, निंदा की बात, चुगली की बात, फालतू क्या हुआ, अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा होता है, तो बाबा कहता है फिर आंखों से इस प्राणी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना। बाबा कहते हैं आपको मैंने तीसरी आंख दी हुई है, अगर हम तीसरी आंख खुली रखेंगे तो ये दो आंखें खुली भी रहेंगी तो कोई असर नहीं होगा, प्राणी दुनिया को देखेंगे लेकिन देखेंगे नहीं। अगर तीसरी आंख बंद कर ली तो फिर प्राणी दुनिया दिखेगी। तो बाबा कहते उसमें देखने में आप सब जानते हैं, नावल पढ़ना, टीवी देखना, सिनेमा देखना, फालतू के क्रिकेट मैच देखना आदि आदि, बाबा कहते हैं सब वेस्ट ऑफ टाइम है। देवता उतना ही देखते हैं जितना देखना अच्छा है, और ना कम देखते हैं ना ज्यादा देखते हैं। देवता उतना ही सुनते हैं जितना सुनना जरूरी है, ना कम सुनते हैं ना ज्यादा सुनते हैं। तो वो स्टेज हमको संस्कार धारण करना है। इसलिए दो परहेज बाबा ने बताए हुए हैं फरिश्ता बनने के लिए, एक तो अन्न दोष, एक संग दोष। अब संग दोष में क्या आता है, बाबा यहां तक कहता है कि अगर आपने निरंतर बाबा का संग नहीं किया तो भी आप संग दोष से पीड़ित हैं। बाबा के प्यार भरे संग को कहते हैं योग। हम दूसरों को कहते हैं योगी बनो, पवित्र बनो। अब ये योगी बनो अपने लिए भी तो है। अब बाबा कहते हैं योगी में क्या कुछ आता है, हमारा योग सहज योग है, क्योंकि सहज चीज सदा करी जा सकती है, पार्ट टाइम योग नहीं है। हमारा योग सहज योग है, बाबा का योग कर्म योग है। ऐसे नहीं कि आप योगी बन के बैठ जाओ, कर्म करना ही छोड़ दो। कई ऐसे भी होते हैं चलो यज्ञ में सरेंडर होने की कोशिश करते हैं, इजी लाइफ हो जाएगी, ना मेहनत करनी पड़ेगी, ना नौकरी करनी पड़ेगी, ना बिजनेस करना पड़ेगा, यज्ञ में आ जाओ। बाबा कहता है नहीं, कर्म करते हुए योग में रहना है, नहीं तो आपके पुराने हिसाब किताब कैसे चुकते होंगे। हर एक आत्मा का अपना कर्म भोग है। तो कर्म योग, सहज योग, फिर राजयोग। राजयोग मैंने हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करें। अपनी इंद्रियों का राजा बनेंगे तब जाके सतयुग में राजा बनेंगे। अगर हमारी इंद्रियां ही हमारे कंट्रोल में नहीं है तो राजा कैसे बनेंगे। जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता वो सारी प्रजा को कैसे चलाएगा। वहां पर कोई गुस्सा करना, मारपीट करना तो होता नहीं, विल पावर होती है शुद्ध। इसलिए बाबा कहते हैं इंद्रियों के कंट्रोल का प्रूफ क्या है, क्या मैं हर एक के लिए हर परिस्थिति में शुभ भावना, शुभ कामना रखता हूं। क्योंकि सतयुग में शुभ ही शुभ होता है, तो अगर मैं अभी से शुभ शुभ नहीं सोचूंगा तो मैं फरिश्ता भी नहीं बन सकता। फरिश्ता हमेशा भला करने वाला होता है। तो क्या अगर इंद्रियों का कंट्रोल होगा तो शुभ कामना, शुभ भावना रखेंगे। अगर इंद्रियों के अंदर, मन के अंदर खाने पीने की अशुद्धि है, संकल्पों की अशुद्धि है, विचारों की अशुद्धि है, तो फिर शुभ भावना, शुभ कामना सबके लिए नहीं रखेंगे, किसी किसी के लिए रखेंगे, बाकियों के लिए नहीं रखेंगे। बाबा कहते हैं फरिश्ता जो होता है वो सारे विश्व का कल्याण करता, एक दो का कल्याण या हजार दो हजार का कल्याण नहीं करता। धर्म स्थापक भी सिर्फ अपने धर्म वालों के लिए होते हैं, लेकिन फरिश्ते जैसे ब्रह्मा बाबा सारी दुनिया के सभी आत्माओं का कल्याण सोचता है। आपको पता है एक बार कोई भाई सांप पकड़ के ले आया मधुबन में और उसको बोतल में डाल दिया। एक दो दिन बाद सांप जैसे मरा सा हो जाता है, लेटा हुआ पड़ा था, तो बाबा ने कहा बच्चा उदास हो गया, इसको जंगल में छोड़ा। तो बाबा सांप को भी बच्चा कहता था। अब आप सोचो इतना प्यार, इतना भाव रचेता के रूप में। तो हम अगर बच्चे को सांप कहना शुरू कर दें तो फिर क्या होगा, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं शुभ भावना शुभ कामना के लिए विश्व कल्याण के लिए हमको तैयार होना है। अब विश्व कल्याण के लिए बाबा ने बताया हुआ है, एक तो हमारा कोई भी मन के अंदर भी किसी भी प्रकार का आकर्षण पुरानी दुनिया के लिए नहीं होना चाहिए। आप सोचो, अपने आप को टेस्ट करो कि पुरानी दुनिया की कोई भी चीज मुझे आकर्षित करती है या नहीं करती। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, क्या स्वर्ग में, गौर से सुनना, क्या स्वर्ग में कोई खराब चीज हो सकती है? जो कहते हैं कि स्वर्ग में कोई चीज जरा भी खराब नहीं हो सकती क्योंकि वो स्वर्ग है, जरा हाथ उठाइए। स्वर्ग में खराब चीज नहीं हो सकती, हाथ उठाइए। नहीं हो सकती ना, पक्का? अच्छा ठीक है, अपने उत्तर को ध्यान में रखना। स्वर्ग में कोई खराब चीज नहीं हो सकती, हम सब मानते हैं। अब इसका दूसरा भाग है, क्या नरक में कोई अच्छी चीज हो सकती है? हो सकती है या नहीं? अब देखो, अगर कोई आत्मा आज भी इस दुनिया में किसी ना किसी चीज को अच्छा मान ले तो क्या हुआ, धोखे में आ गया कि नहीं आ गया? उसके आकर्षण में आ जाएगा कि ये मकान बहुत अच्छा है, कितना शानदार पत्थर लगा हुआ है इसके ऊपर। अब बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि तो मकान में पत्थर ही लगाएंगे, कितना भी अच्छा पत्थर हो। जैसे सांप तो सांप होता है, कई सांपों के ऊपर बड़ा अच्छा डिजाइन बना हुआ होता है, क्या ये डिजाइन बहुत अच्छा है तो सांप। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं जो हीरा बुद्धि है वो तो अपने महलों के बाहर हीरा लगाएंगे और जो पत्थर बुद्धि है वो पत्थर लगाएंगे। तो क्या सचमुच हम कह सकते हैं कलयुग का कोई भी मकान अच्छा है? हमको लोग आके सुनाते हैं दुबई में एक बहुत बड़ा ऊंचा टावर है, सतयुग में इतनी ऊंची मंजिल के मकान होते ही नहीं, डबल स्टोरी भी नहीं होता, जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए अगर हम ये अपने आप को टेस्ट करें कि पुरानी दुनिया में कोई अच्छी चीज हो ही नहीं सकती तो फिर मेरी अट्रैक्शन इसमें क्यों? इससे तो मुझे विराग होना चाहिए, इससे तो मुझे घृणा होनी चाहिए। वास्तव में आप सोचो, कोई कब्रिस्तान में मुर्दाबाद मुर्दों की दुनिया में कब्रिस्तान में चला जाए और वहां मुर्दे चल फिर रहे हो, कोई मुर्दा आए और कहे मेरे से बाकी पहन लो, आप पहनोगे? नहीं। अब बाबा कहे तो मृत्यु लोक है, इसका नाम ही कब्रिस्तान है, कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती है, जहां तो शांति सुख हो ही नहीं सकता, हर वक्त डर है मेरा शरीर ना छूट जाए। और बॉडी कॉन्शियस के लिए तो मृत्यु ही परलय है, हमको तो पता है कि शरीर छूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कोई कहे ये सेब बहुत अच्छा है, इस सेब तो अच्छी चीज है ना, चाहे कलयुग में हो या सतयुग में हो, सेब में क्या नुक्स है आप बताओ? कोई कहे सुबह मैं सैर करने जाता हूँ, क्लास मिस करके भी जाता हूँ, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है ना संगम युग का शरीर बड़ा वैल्यूएबल है, उसका भी उल्टा अर्थ ले लेते हैं, संगम युग का शरीर बड़ा वैल्यूएबल है, योग का टाइम मिस करके सैर करो, ये शरीर छूट गया तो संगम ही खत्म हो जाएगा। वाह, बाबा कहता है क्या लक्ष्मी नारायण सैर करते थे हेल्थ बनाने के लिए? सोचने की बात है, क्या श्री लक्ष्मी नारायण एक्सरसाइज करते थे? तो इसलिए यहां का सेब भी किस तत्वों का बना हुआ, सतो प्रधान तत्वों का बना हुआ है या तमो प्रधान तत्वों का बना हुआ? दूसरी बात, दुनिया वाले कहते हैं एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, कि सेब खाने से हेल्थ बनता है। आप क्या सोचते हैं कि हमारे आयु का, हमारे स्वास्थ्य का आधार सेब है या हमारे कर्म है? क्या ख्याल है? एक आधे मिनट का योग आप 100 सेब के बराबर है। जब मैं नया नया ज्ञान में आया था तो मैं बादाम खाया करता था, ये बादाम बड़ी अच्छी चीज है, बादाम भिगो के खाना है। और जब बादाम खाने लगता था तो अपने कमरे का कुंडा लगा लेता था ताकि किसी को लगे न कि भाई जी बादाम खा रहे हैं। अब एक दिन क्या हुआ, किसी ने आके मेरा कुंडा खटखटाया और बादाम मेरे मुंह में थे। उसने दूसरी बारी खटखटाया तो मुझे खोलना पड़ा, तो मैं बादाम खाता खाता उससे बात कर रहा था। तो जो मैं छुपाना चाहता था वो मेरे से नहीं छुपा। उस दिन मैंने सोचा कि भाई इन बादामों में कितनी की ताकत है, और अगर मेरा शरीर ठीक नहीं है, मेरा लिवर ठीक नहीं है, तो बादाम तो मुझे नुकसान भी कर सकते हैं। इन बादामों की शक्ति और योग की एक सेकंड की शक्ति कितनी पावरफुल है, इसमें क्या रखा है छोड़ो। बाबा कहता है भील लोग खाली सूखी रोटी पे मिर्ची लगा के खाते हैं, वो भी स्वस्थ होते हैं। तो हमारे स्वास्थ्य का आधार, बाबा ने कहा हुआ योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ती है, योग बल से तुम्हारी हेल्थ बनती है, योग बल से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। तो मैं योगी हूँ या भोगी हूँ? तो मैंने सोचा ये फालतू चीज है। इसी प्रकार से आप गौर से देखोगे तो हमारे पास योग की दवाई है जिससे आपका एक जन्म नहीं बल्कि आपका 21 पीढ़ी तक आपका हेल्थ रहता। कितनी अच्छी बात है। जब मैं अज्ञान काल में था, मुझे जोशी ने बताया था कि तुम्हारी आयु जो है 49 ईयर है, 49 ईयर तक तुम जियोगे। अच्छा, अब मेरी आयु 85 है, कैसे हो गई? सोचने की बात है, शरीर की बात ही ले लो। इसलिए हम अलौकिक तरीका छोड़कर लौकिक में आते हैं। अब बाबा कहते हैं फरिश्ता विश्व का कल्याण करता है, तो फरिश्ते की स्मृति कैसी होनी चाहिए? फरिश्ते की स्मृति से दूसरों में ताकत आ जाए, समर्थ आ जाए। जैसे बाबा हमें कहता है तुम अपनी श्रेष्ठ पावरफुल स्मृति रखोगे तो तुम्हारे अंदर समृद्धि आएगी, तो फरिश्ते की स्मृति से दूसरे को समृद्धि आ जाए। फरिश्ते की वृत्ति से वायुमंडल पावरफुल हो जाए और पावन हो जाए। वृत्ति से वायुमंडल बनता है, तो वृत्ति तो आपके मन के अंदर ही है, समृद्धि भी आपके मन के अंदर ही है। दृष्टि से बाबा कहता है दूसरों को आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, बाबा का साक्षात्कार हो जाए, जिसको कहते हैं नजर से निहाल। फिर बाबा कहते हैं कृति से आप ऐसे कर्म करो जिससे क्या हो कि दूसरे के अंदर हिम्मत आ जाए श्रेष्ठ कर्म करने की। अब देखो है बड़ी सूक्ष्म बात, आप कहेंगे कैसे आ जाए? अगर आप मंदिर की मूर्ति के आगे जाके खड़े होते हो तो मूर्ति तो जड़ है ना, मूर्ति कोई चेतन देवता तो नहीं खड़ा है, लेकिन जड़ मूर्ति है। आप गौर से देखोगे कि जब लोग भगत मूर्ति के दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन करते समय आंखें बंद कर लेते हैं। आप सोचो कि दर्शन आंखें खोल के होते हैं या आंखें बंद करके? लेकिन वो आंखें बंद क्यों करते हैं कि उसके जो गुण हैं उसको याद करते हैं। जैसे किसी ने गांधी की मूर्ति देखी तो गांधी की लाइफ याद आएगी ना। अच्छा, तो उसकी मूर्ति को देखने से, उसके समीप जाने से उनको फीलिंग आती है, वाइब्रेशन आता है। इसी प्रकार से हमें भी जो हम अपनी वृत्ति धारण करते हैं विश्व कल्याण के लिए, हमारा वाइब्रेशन फैलता है। और बाबा कहते हैं इस वाइब्रेशन फैलने से ही विश्व के खराब वाइब्रेशन खत्म हो जाते हैं। अकेले ब्रह्मा बाबा ने वाइब्रेशन फैला फैला के इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार लाखों का रच लिया कि नहीं रच लिया? बाबा ने बच्चों से किया, बच्चों ने आगे किया, तो ये अभ्यास हमको करना है। अब रह गई अंतिम की बात। अंतिम समय, ब्रह्मा बाबा के अंतिम समय तो हमने देखा, अंत के समय क्या होगा। बाबा कहते हैं दुनिया तमो प्रधान होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही। अंत के समय हमारी बुद्धि को बहुत सारी चीजें खींचेगी, अनेक संकल्प आएंगे, उसका विस्तार होगा, और हमें उस समय सारे विस्तार को समेटकर एक संकल्प करना होगा कि मैं अब घर जा रहा हूं। अब इस विस्तार को सार में करने के लिए ब्रेक पावरफुल चाहिए। अगर आपने ब्रेक नहीं लगा पाए या अचानक ब्रेक लगाई, किसी तेज चलते हुए गाड़ी को अचानक ब्रेक लगाओ तो उलट जाती है, वो अभ्यास हमें करना है। फरिश्ते बनने का अंतिम अभ्यास वास्तव में ये है कि हम पहले से तैयारी रखें कि अंतिम घड़ी में हम सार को समाप्त कर सकें। ये है असली बात, और इसके लिए बाबा ने हमको तरीका बताया है कि पहले से ही अपने मन को जहां लगाना चाहो वहां लगा सको अपनी मर्जी से, जितना समय लगाना चाहो वहां लगा सको, फिर उसको वापस भी ला सको। अभिमन्यु की कहानी सुनाते हैं कि अभिमन्यु नाम है अभिमान का, वो चक्रव्यूह के अंदर एंटर होना तो जानता था, उसको बाहर आने का रास्ता नहीं आता था। इसी प्रकार से हम किसी जगह हमारा मन टिक तो जाए, फिर हटे ना, तो ये फिर आपकी ब्रेक स्ट्रांग नहीं है। तो ये हमको अभ्यास करने के लिए बाबा ने ये पांच धाम की यात्रा बताई हुई है कि धीरे धीरे अपने मन को थोड़े समय के लिए परम धाम ले जाओ जहां हमको अवश्य जाना है, थोड़े समय के लिए सूक्ष्म लोक में ले जाओ जहां हमारा सारा कारोबार चलता है, बाबा से हमको मिलना हो तो भी सूक्ष्म लोक में जाते हैं, सारी ब्राह्मण परिवार की मशीनरी सूक्ष्म लोक से चल रही है। सूक्ष्म लोक होता ही संगम युग पर है, उसके ना आगे ना पीछे। फिर अपने मन को ब्राह्मण रूप में ले आओ संगम युग पर, कह रहे वाह क्या हमारे को बाबा ने बनाया है, कितना भाग्यशाली बनाया है, इतना भाग्यशाली बनाया है कि पद्मा पद्म जिसकी गिनती नहीं होती, अनगिनत भाग्यशाली बनाया है। फिर बाबा कहता है जो आने वाला आपका देवता स्वरूप है उसको भी इमर्ज करो। तो हम अपने आप मन को इसमें बिजी रखेंगे तो आपका व्यर्थ भी नहीं होगा, आपका नेगेटिव भी नहीं होगा, और आप तैयारी कर रहे हैं अपने मन को कंट्रोल में लाकर चलाने की, तब आपका ब्रेक लगेगा। ओम शांति।